चंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। श्रद्धा की एक बात याद आई कि श्रद्धा होने से काम बहुत शीघ्र सिद्ध हो जाए, मान जल्दी कार्य की सिद्धि हो जाए, जिससे दो पार्टी आपसी के बीच के मां लड़ रही है राग द्वेष के कारण से। एक दूसरे के दोष को देख रही है और अपनी सफाई दे रही है, और जितनी अपनी सफाई और दूसरे के दोषों को प्रमाण करना उतना ही राग द्वेष बढ़े, झूठ भी हुए और पतन भी हुए। उनके श्रद्धा हुए कम तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है, जिनमें श्रद्धा हुए उनको समझाना इतना कठिन नहीं है। यह बात भी लोग जब जब काम पड़े लोगों को आपसी को झगड़ों मिटाना को तब तब यह बात देख। श्रद्धा यदि अधिक हुए तो प्रथम तो झगड़ो हो ही नहीं, और हो तो बस मिटाने में देरी नहीं लगे, इतनी बार लगे कि यह बात इसलिए करनी चाहिए तो श्रद्धा होना ठीक है, इतने में झगड़े मिटो। और भीतर के वहां राग द्वेष हो है, उसको कितना ही समझाओ बात उसके समझ में नहीं आती। आजकल के समय में जो वोट को जो काम है, वोट लेना, अधिक वोट वाले जो है वो ही पास हुए, तो ये भी एक बहुत भारी राग द्वेष को एक समूह है। थोड़ा ध्यान देकर के देखो, वोटों से पास होने वाले मनुष्यों के बीच की मां अच्छा आदमी शायद ही कोई निकले। मैं यदि वोटों के ऊपर खड़ा होऊंगा तो गंदे से गंदा काम मुझको करना पड़ेगा, खराब से खराब काम। दूसरे की जो निंदा ये खराब से खराब चीज है और अपनी प्रशंसा, मैं इस बात को साबित करूंगा कि ये इसके लायक नहीं है, इसमें ये दोष है, ये दोष है। उसने जो जो बुराइयां की है वो विख्यात है, सबका अध्ययन करूंगा, अध्ययन करके उसका प्रचार करूंगा कि इसमें ये दोष है, ये दोष है, और बढ़ा करके कहूंगा जो दोष है उससे और बढ़ा कर कहूंगा। और अपने विषय में जो गुण है या नहीं है, जो कुछ संसार में ख्याति है कि हमारे में ये गुण है, ये गुण है, और हमने जो कुछ कभी दूसरे की से काम भाव से सेवा की है, भैंस से सेवा, किसी भी प्रकार से सेवा की है, उसको सबको हम करेंगे निष्काम भाव से सेवा, स्वार्थ त्याग करके सेवा, और उसको बढ़ा चढ़ा करके कि देखो मैंने ये काम किया, ये बढ़िया काम किया, ये बढ़िया काम किया। जनता को ये जलाना होगा कि मेरे समान तो कोई लायक नहीं है, और मेरा जो प्रतिपक्ष है उसके समान कोई नालायक। यही बात वो मेरे से विरुद्ध में जो खड़ा होगा वो कहेगा, तो मेरे में जितने जो होगा उसका तो वो बखान करेगा, और वो अपने अवगुणों को लग होगा अपने गुणों का सूर्य बखान करेगा तो हमें ये जो अपने सफाई देता है और दूसरों की निंदा करता है और अपनी प्रशंसा करता है, इसी प्रकार से वह एक प्रकार से अपने धर्म की सफाई देता है, अपने दोषों की तो गुणों की खुद बड़ाई करता है और दूसरों के बीच के वहां समझो की अवगुण कायम करता है। तो बिल्कुल एक दूसरे से मेल ये बात नहीं खाती। तो हम किसकी बात को तो सत्य माने, किसकी बात को मिथ्या माने? हम जब विचारते हैं निरपेक्ष भाव से तो ये मालूम होता है कि दोनों झूठे हैं, दोनों ही अपनी बढ़ाकर के झूठी बढ़ाई करते हैं और दोनों ही बढ़ाकर के एक दूसरे की निंदा करते हैं। तो अपनी जो मिथ्या बढ़ाई करना महान दोष है, सच्ची बढ़ाई करना अपने लिए लज्जा की बात है और मिथ्या बढ़ाई करना महान दोष है। इसी प्रकार से दूसरे की सच्ची निंदा करना भी दोष है और बढ़ा करके अधिक निंदा करना तो बड़ा भारी दोष है। तो हर एक प्रकार से हम पाप के भागी होते हैं, ईश्वर के यहाँ हमारा घोर पतन हो जाता है और संसार के लोग भी एक प्रकार से थोड़ा समझ लेते हैं। संसार के लोग तो एक प्रकार से ये समझ लेते हैं कि ये एक प्रणाली है, नीति है, ऐसे इतना बुरा उनको शायद नहीं भी मालूम दिए। ईश्वर के ग्रस्त तो एकदम उसका पतन हो जाता है और राग द्वेष जो है बढ़ जाता है। यही बात हम जब किसी की पंचायती करने के वास्ते खड़े होते हैं तो दोनों आदमियों के बीच के मां एक दूसरे के दोष का कथन करना और अपने गुणों का कथन करना, अपनी एक प्रकार से निर्दोषता का प्रकट करना, तो वो मामला जल्दी निमट जाता है। पर जहां श्रद्धा नहीं होती है वहां वो मामला उलझन में पड़ जाता है, कठिन पड़ जाता है। मैंने ऐसे सैकड़ी पंचायतें की होगी और इसका एक प्रकार से अनुभव है। जहां दोनों श्रद्धा वाले मिल गए वहां तो मामला तुरंत ही मिट जाता है और जहां एक श्रद्धालु और एक अश्रद्धालु है वहां भी मामला निमट जाता है। और दोनों एक प्रकार से थी श्रद्धालु नहीं होती है तो उनका मामला मिटना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इससे हमने ये शिक्षा दी कि जहां दोनों ही श्रद्धालु नहीं हो वहां का तो मामला लेना ही नहीं, और दोनों में एक हो तो वो आगे जाकर के मिट सकता है, इसलिए कोई अर्ज की बात नहीं। और दोनों ही आदमी अपने घर के और दोनों ही आप बात मानने वाले हों वहां तो बात ही क्या है। बात यह है कि ये जो हृदय में जो राग द्वेष होते हैं ये मिटे कैसे? तो ये सेवा भाव से मिटते हैं, श्रद्धा से मिटते हैं। एक पतिव्रता स्त्री है, अपने पति में सेवा भाव है, उसने ये समझा कि मेरे पति के बीच के मां लोग अवगुण तो बताते हैं और उसको भी अवगुण प्रतीत होते हैं, किंतु उसका ये सिद्धांत है कि ये मेरे पति हैं, इनकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म। तो उसको साक्षात एक ईश्वर के समान समझ कर करके और उसकी वो आज्ञा का पालन करती है तो उसकी राग द्वेष नाश होकर के उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से एक लड़का है, और माता पिता का भक्त है और माता पिता को ईश्वर के समान समझ करके और उनकी आज्ञा का पालन करता है, सेवा करता है, तो इस प्रकार के करने से उस बालक के राग द्वेष मिट जाते हैं और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, जिससे पतिव्रता स्त्री हो। तो अब ये बात बतलाई जाती है कि कैसे, तो ये बात समझो कि लोग कहते समझ में नहीं आती कि माता पिता की सेवा करने से उसको पुण्य तो होना चाहिए, स्त्री जो पति की सेवा करती है तो उसको पुण्य होना चाहिए, धर्म का लाभ होना चाहिए, किंतु मुक्ति कैसे हो जाती, मुक्ति तो होती है ज्ञान से और ज्ञान होता है राग द्वेष के नाश से, तो राग द्वेष का नाश एक प्रकार से कोई बिना मुक्ति कैसे हो जाती। तो उसका ये उत्तर है कि इस सेवा भाव से राग द्वेष का नाश हो जाता, वो प्रतिवर्ता स्त्री अपने मन की जो बात है वो करना चाहती है किंतु पति उसको कहता है कि ऐसा मत करो, तो पति का हुक्म मान करके उसको छोड़ देती, तो मन की अनुकूलता पर आघात पड़ता है, तो बार बार आघात पड़ने से मन की अनुकूलता का नाश हो जाता है। देखती है कि तुम्हारे मन के अनुकूल होना तो है नहीं, छोड़ो इसको। वो चाहती है कि मैं तीर्थों में जाऊं, एक प्रकार से उपवास करूं, और पति कहता कि नहीं, तीर्थों के मां मत जाओ और उपवास मत करो। तो उसकी बात मानना ही सेवा है। तो अपने मन की जो इच्छा थी, अपने मन की जो अनुकूलता, उसका उसने त्याग किया। अनुकूलता में जो वृत्ति होती है वो राग है, प्रतिकूलता में जो वृत्ति होती है उसका नाम द्वेष, और द्वेष ही आगे जाकर के वैर भाव को प्राप्त होता है और वो ही एक प्रकार से क्रोध को उत्पन्न करता है और भय को उत्पन्न करता है, नाना प्रकार के उससे दुर्गुण पैदा होते हैं। ऐसे जहां अनुकूल वृत्ति में भी दोष पैदा होती, और उस स्त्री के पतिव्रता स्त्री के जो ऐसा काम है तो उसके मन स्त्री के पति चाहता है, तो पति की इच्छा देख करके अपने मन के विरुद्ध काम भी वो करती है। एक कोढ़ एक स्त्री थी और उसका पति कुष्ठ रोगी, और एक समय की मां कोई बेसंक उसने देख लिया और उस पर उसका चित्त मोहित हो गया, वो बहुत ही चिंता मगन है। स्त्री ने पूछा कि आपके कौन बात की चिंता है, तो बोला कि वो कठिन काम है, तेरे से नहीं होगा। बोल नहीं, कैसा ही कठिन हो आप बतलाई, तो उसने वो बात बतलाई। उस पतिव्रता का नाम सुदीर्घ था, वो लंबी थी, इस बात तो उसका नाम दीर्घ था। तो उसके पति ने कहा कि ऐसे ऐसे अमुक जो एक स्त्री है जिसकी मैंने देखी थी और उससे मैं मिलना चाहूं, ठीक है। वो बेसा के यहां गई और जाकर के उसके सेवा का काम करने लगी, जो बल्कि उसके विपरीत पड़ता था। वहां जाकर उनके पास जो यार दोस्त आए और लोग आए, उनकी खातरी करना, जूठा बर्तन मांजना, एक प्रकार से उसकी सेवा कर कर कि उस बेसर उसने खुश कर लिया, लिया नहीं कुछ हुई। तो बेसा ने कहा कि मत तुम्हारी ढीली होगी और तुम उसको बता तू क्या चाहती। तब उसने कहा कि मेरा पति इसको खुश रोगी है, वो तुम्हारे से सेवा चाहता है, तो तुम्हारा हुक्म हो तो उसको मैं ले आऊं। तो उसने कहा कि तुम ले आ, मेरा भी कुछ रोगी से मैं मिलना तो नहीं चाहती, किंतु तेरी सेवा से मैं मुक्त होगी क्या उपाय करें। तो फिर अपने पति को खटिया में सुला करके वो खटिया अपने सिर पर लेकर के और वो बेसन घरे जा रही। रस्ते के बीच के वहां जो मांडव ऋषि की सूढ़ी हुई थी उस सूढ़ी के पैर लगने से उस का ध्यान उस तरफ चला गया। उस मानव ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि सूर्य उदय होने से ही तेरा पति सुमर जाएगा। मतलब जिसके पैर से ये सूर्य हारी है वो प्रातःकाल होते ही मर जाएगा। उसने ये बात सुन ली, उसने कहा कि जब सूर्य उदय होने से मेरा पति मर जाएगा तो सूर्य उदय क्यों होगा। वहां बताया बहुत दिनों तक सूर्य उदय नहीं हुआ। ये कथा शायद पद्म पुराण की नहीं तो स्कंद पुराण की होगी। इसी से मिलती जुलती कथा ना उसका दूसरा था मार्कंडेय पुराण में भी आती। उसके बाद में सूर्य एक प्रकार से उदय नहीं हो सका। बहुत से ऋषि लोग और देवता लोग उसके स्थान पर आए, साथ में अनुसुईया आई। अनुसुईया ने आकर के उसकी प्रशंसा की कि धन्य है तेरे पातिव्रत धर्म के प्रभाव से सूर्य सो उदय होना बंद हो गया है, इससे लोग एक प्रकार से व्याकुल हो गए हैं, तो तू जो है सो सूर्य को आज्ञा दे तब सूर्य उदय होगा। उसने कहा कि देखो सूर्य उदय होने से मेरा पति मर जाएगा तो मैं कैसे आज्ञा दूं। बोले तुम्हारे पति को हम लोग जीवित कर देंगे, कोई भी तुम्हारी चिंता नहीं। उसने कह दिया ठीक है, जो ऐसी बात है सूर्य उदय हो सकते हैं। सूर्य उदय होने से उसका पति मर गया और अनुसया ने अपने पातिव्रत धर्म के बल से उसको सजीव कर दिया और ऋषि और देवताओं का दर्शन पाकर के उसका पति भी एकदम से पवित्र हो गया। उसके बाद में वो पतिव्रता से अपने कुष्ठ रोगी पति के सहित परम गति को चली गई। तो यहां ये बात दिखलानी है कि कितने मन के प्रतिकूल बात है। एक तो पति जो सुपरस्थिति से गमन करे ये कितनी बुरी बात है, फिर बेसल से गमन करे और फिर वो काम उसके द्वारा ही करावे और उस स्त्री को इतना मन के विपरीत काम करना पड़े कि पतिव्रता होकर के किसी पति के लिए एक उसे बेसल की जाकर सेवा कर दी, कितनी मन के विपरीत बात है। किंतु ऐसा काम उसने किया। तो मन के प्रतिकूल काम को करने से जो अपना प्रतिकूल भाव है वो नष्ट हो जाता है, तो अनुकूल वृत्ति का नाश होता है, प्रतिकूल वृत्ति का नाश होता है। तो दोनों पर बार बार आघात पड़े, चोट पड़े, किसी भी इस बक्षा पर बार बार चोट पड़े तो बक्षा टूट जाती है। मनुष्य के ऊपर बार बार चोट पड़े जो कि तो मनुष्य आगे मर जाता है, चोट पड़ती रहता। तो उसके समझो कि राग द्वेष नाश हो जाते हैं कि अनुकूल में राग और प्रतिकूल में द्वेष उत्पन्न होते हैं और अनुकूल वृत्ति और प्रतिकूल वृत्ति का नाश हो जाता है। तो इससे राग द्वेष का नाश हो जाता है। राग द्वेष से सारे दोषों को और पापों को और दुर्गुणों को उत्पन्न करने वाले हैं, तो उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है, अशुद्ध अंतकरण में अपने आप ही परमात्मा का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। तो युक्ति संगत भी और शास्त्र संगत भी इसी प्रकार से थी। गुरु की आज्ञा का जो पालन करने से, महात्मा की आज्ञा का पालन करने से समझो कि उसके राग द्वेष नाश हो जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सेवा भाव होने से तिराग द्वेष का नाश हो जाता है। एकनिष्ठ सेवा होनी चाहिए, जैसे भगवान का भक्त भगवान की सेवा करता है ऐसे ही माता पिता की सेवा करनी चाहिए, मातृदेवो पितृदेवो आचार्य देव भव अतिथि देव भव छांदो उपनिषद के मन में तैतृय उपनिषद में सब बात लिखी है और उसमें ये बात दिखलाई गई। इसी प्रकार से अतिथि की ईश्वर समुद्र सेवा करने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही समझो कि अपने महात्मा की सेवा करने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है, तो उनमें श्रद्धा बुद्धि होने से ये बात होती है या पद के कारण से। स्त्री जो है वो अपने पति को स्वामी ईश्वर के समान मानती है, तो इसे पद के कारण से। लड़का माता पिता को अपने ईश्वर के समान समझता है तो पद के कारण से। अरे जहां पद तो नहीं है किंतु एक समझो कि महात्मा में हमारी श्रद्धा है, तो श्रद्धा के कारण से उनके आज्ञा का पालन करते हैं, तो उससे भी वही बात हो जाती है, श्रद्धा से भी वही काम हो जाता है। तो श्रद्धा एक और उच्च कोटि की चीज है। जैसे माता पिता में हमारी श्रद्धा नहीं है, उनको बड़ा समझ कर उनके आज्ञा का पालन करते हैं, जब उससे हमारा कल्याण हो सकता है, तो जिनमें फिर हमारी श्रद्धा है उनके आज्ञा के पालन करने से कल्याण हो जाए, उसमें कराए क्या है, बल्कि श्रद्धालु की आज्ञा का पालन सहज में हो जाता है, और कायदे से माता पिता की आज्ञा का पालन जो सो दबाव मान करके हम करते, ऐसे करते संकोच में पढ़ करके करते हैं। और जहां श्रद्धा है वहां तो न भय न संकोच न कायदा, वो तो एक श्रद्धा से करता है, और वो ज्यादा उसका दर्जा और उच्च कोटि का होता है, और उसका काम बहुत शीघ्र सिद्ध हो जाता है। इस वास्ते श्रद्धा जो चीज है वो एक प्रकार से कायदे से भी बढ़ करके। माता पिता ने क्या क्या का पालन करना है, एक प्रकार से ये सदगुणी तो नहीं है, पति सदगुणी तो नहीं है, बल्कि उसमें दुर्गुण है, किंतु पति है ना, इस बोल कर उसकी आज्ञा का हम पालन करते हैं। गुरु है ना, उसकी गुरु समझ कर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, कोई लायक तो नहीं है परंतु गुरु समझ कर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। एक दूसरा आदमी आज्ञा का पालन करता है एक प्रकार श्रद्धा पूर्वक, एक कोई कायदे को लेकर नहीं, ये महान पुरुष है, इनकी आज्ञा का पालन करना से हमारा कल्याण है, इस प्रकार से महात्मा समझ करके उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसके अनुकूल हो जाता है, तो अनुकूल भी वो शीघ्र हो जाता है और उसका उद्धार भी शीघ्र हो जाता है, और उससे का जो भाव है श्रद्धा है उद्दामी चीज होने के कारण से वो काम बहुत ही शीघ्र सुसिद्ध हो जाता है। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि श्रद्धा जो चीज है वो बहुत उच्च कोटि की चीज है, तो श्रद्धा से तिराग द्वेष का नाश हो जाता है। जब एक प्रकार से अपने से बड़ा मान करके पूज्य मान करके उन्हें की आज्ञा का पालन करने से राग द्वेष का नाश हो जाता है, समझो कि भय से थी और संकोच से थी और उनको बड़ा मान करके उसका आदर कर करके हम निर्दोष हो जाते हैं, राग द्वेष के नाश हो जाते हैं, तो फिर श्रद्धा से हो जाए उसमें फिर कहना ही क्या है। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि श्रद्धा सबसे बढ़कर की चीज है, जहां श्रद्धा हो जाती है वहां फिर राग द्वेष विशेष समय तक ठहरते नहीं, तो राग द्वेष जो टिके हुए है ये श्रद्धा की कमी के कारण से टिके हुए हैं, और भी हमारे में जितने जो दोष टिके हुए हैं श्रद्धा की कमी के कारण से। हम रोज भगवान की भक्ति की प्रशंसा सुनते हैं, ज्ञान की प्रशंसा सुनते हैं, उत्तम गुणों की उत्तम आसनों की प्रशंसा सुनते हैं, और चाहते हैं कि ये उत्तम गुण उत्तम आसन हमारे में आवे, ईश्वर की भक्ति हमारे में हुए, ईश्वर में हमारा प्रेम हुए, ये हम चाहते हैं, फिर भी एक प्रकार से थी वे हमारे में नहीं होती, जिस बातों को हम उत्तम समझते हैं किंतु उसका संपादन नहीं कर सकते हैं, जिन बातों को हम बुरी समझते हैं उसका हम त्याग नहीं कर सकते हैं, तो कारण क्या है कि हमारे में राग द्वेष है, और हमारे में समझो की श्रद्धा नहीं, श्रद्धा से तिराग देशों का नाश होकर के समता आ जाती। जो महापुरुषों के मां समता की जो बात बतलाई वो समता उस पुरुष में आ जाती है जो श्रद्धालु पुरुष है। और समता जो है जब आ गई तो सारे दोषों का नाश होने पर ही समता आती, क्योंकि ईश्वर जो सुषम है और निर्दोष है, तो जिसके मन समता आ जाती है वो भी निर्दोष है। तो एक प्रकार से समझना चाहिए कि वो परमात्मा को प्राप्त हो चुका। ये तीर्थेश्वर को ऐसा स्वामी ने निर्दोष संगी समन ब्रह्म तस्मात ब्रह्म था। उन पुरुषों ने यही संसार को जीत लिया है जिनका मन समता में स्थित है, क्योंकि ईश्वर जीवसो और ब्रह्म जीवसो सम और निर्दोष है। इसलिए जिनकी समता में स्थिति है उनकी ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति है, ये कसौटी है, ये निर्णय दिया है गीता ने। गीता की पांचवें अध्याय का ये 19 का श्लोक है। तो सर्वाय कैसी चीज है, हम चाहते हैं कि हमारा साधन तेज हो किंतु तेज नहीं होता, इसमें मूल में कारण क्या है कि श्रद्धा की कमी। हम चाहते हैं कि हमारे दुर्गुणों का नाश हो किंतु होता नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे में सद्गुण आवे किंतु आते नहीं, क्यों कि हमारे में श्रद्धा की कमी। हम ये समझ रहे हैं कि सद्गुण जो है इसके समान कोई बढ़िया चीज नहीं, तो बस ये समझने से सद्गुण हमारे में आ सकते हैं। हम समझ ले कि दुर्गुणों के बराबर बुरी चीज नहीं, फिर दुर्गुण विशेष समय तक नहीं ठहरते। हम कहते तो हैं कि हम दुर्गुणों को बुरा समझते हैं, दुराचार को बुरा समझते हैं, किंतु हम वाणी से कहते हैं और कुछ बुद्धि से भी समझते हैं, किंतु हमारा मन भी स्वीकार नहीं करता।